तीन महीने बाद अरुणिमा का पेट थोड़ा थोड़ा दिखने लगा था। वो तीन महीने की प्रेग्नेंट थी। आस्तिक और अरुणिमा ने इस वक्त एक दूसरे के साथ कोई भी ऐसी बात नहीं की जिससे उन दोनों को एक दूसरे पर गुस्सा आता हो। आस्तिक समझ गया था अरुणिमा से उलझने का फायदा नहीं है, क्योंकि वो अब उससे डरती नहीं है, और अरुणिमा भी समझ गई थी कि आस्तिक इस वक्त सिर्फ बच्चे के लिए शांत है। एक हफ्ते बाद अरुणिमा का पहला ट्रिमेस्टर टेस्ट था। अरुणिमा इसके लिए बहुत एक्साइटेड थी। वो पहली बार अपने बच्चे को मॉनिटर पर देखेगी, उसकी धड़कनें सुनेगी। लेकिन अरुणिमा से ज़्यादा एक्साइटेड तो जानवी लग रही थी, क्योंकि एक हफ्ते बाद बाकी सब लोग सिंगल वापस आ रहे थे। पृथ्वी और जानवी की पहली सालगिरह है। दिल्ली में पृथ्वी का हॉस्पिटल बहुत अच्छा चल रहा है, और जानवी ने भी अपनी माँ की देखभाल अपनी आँखों के सामने करनी शुरू कर दी थी। प्रणाली और सक्षम अपने अपने बिजनेस को संभाल रहे थे। कहने के लिए तो वो दोनों एक छत के नीचे रहते थे, लेकिन आज भी दोनों का रिश्ता सिर्फ एक छत के नीचे रहने तक ही सीमित था। सक्षम तो फिर भी कोशिश करता था, लेकिन प्रणाली ने कोशिश भी नहीं की थी। तो वहीं पर रजत और कीर्ति की शादी को भी 3 महीने हो चुके थे। रजत अभी भी सिंगल में ही था। वो दिल्ली शिफ्ट नहीं हुआ था, क्योंकि उसके डिपार्टमेंट ने उसे यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी काम दे दिया था, जिसकी वजह से वो अभी दिल्ली शिफ्ट नहीं हो सकता था। पर अगले 1 महीने में उसे दिल्ली जाना था, और उससे पहले वो दिल्ली में एक अच्छा सा घर ढूंढ रहा था जहाँ पर वो कीर्ति को लेकर रह सके। ज्योति इन दिनों अपने घर आई हुई थी। वैसे तो वो कीर्ति को कॉलेज के दिनों से जानती थी, लेकिन अब उनका रिश्ता बदल गया था, जिस वजह से ज्योति भी थोड़ी सी अनकंफर्टेबल होकर कीर्ति से बात किया करती है। रजत अपने कमरे में आता है तो देखता है कीर्ति सोफे पर बैठी हुई है और उसके एक हाथ में मैगजीन है। रजत को आया देख कीर्ति मैगजीन टेबल पर रख देती है और खड़ी हो जाती है। वो रजत से कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन रजत उसे इग्नोर करके अलमारी के पास जाता है और वहां से अपनी एक शर्ट निकालता है। बाथरूम में जाकर कपड़े चेंज कर रजत वापस कमरे में आता है, लेकिन उसके हाथ में उसकी पुरानी शर्ट थी। वो लॉन्ड्री बास्केट में आता है और वहां से अपनी एक और पुरानी टी शर्ट निकालता है जो शायद मैली हो रखी थी। कीर्ति बस रजत को देख रही थी, क्योंकि 3 महीने से यही सिलसिला था उन दोनों के बीच। ना तो रजत कीर्ति से बात करता था, और अगर कीर्ति बात करने की कोशिश भी करती तो रजत उसे इग्नोर कर देता था। ज्योति उन दोनों के कमरे के बाहर थी और उसने रजत को आवाज़ देते हुए कहा, भाई खाना तैयार है। हाँ, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, तुम तब तक खाना खा लो और अपनी भाभी को भी खिला दो। 2 कपड़े हैं, मैं इन्हें धोकर आता हूँ। ठीक है भाभी, आप आ जाइए खाना खाने के लिए, ये कहकर ज्योति वहाँ से चली जाती है। रजत बाथरूम की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी कीर्ति उसके सामने आ जाती है और कहती है, लाइए मैं धो देती हूँ। पर रजत जल्दी से वो दोनों शर्ट पीछे की तरफ करता है और कहता है, नहीं राजकुमारी जी, आप ये सब काम कैसे कर सकती हैं? आप तो महलों में रहती थीं, ऐशो आराम की ज़िंदगी थी आपकी। मुझसे शादी करके कहाँ आप इस छोटे से घर में आ गई हैं और यहाँ पर अपने काम खुद ही करने पड़ रहे हैं। पर फिर मत कीजिए, भले ही मेरा घर कोई महल नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आपको यहाँ पर कोई तकलीफ ना हो। जहाँ तक बात रही काम की, तो उसकी फिक्र मत कीजिए। मैं और मेरी बहन, हम दोनों को आदत है अपना काम खुद करने की। हम पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ पर आपको कोई काम करना ना पड़े और आपको किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना हो। आप अपने घर में राजकुमारी की तरह रहती थी, तो यहाँ पर भी उसी तरह रहें। जो चाहिए हमें बताइए। ठीक है, आपके भाई की जितनी औकात नहीं है, पर जितनी है कोशिश करेंगे आपकी फरमाइश पूरी हो। रजत की बात सुनकर कीर्ति की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रजत को देखकर कहती है, बस कीजिए, बस कीजिए। और कितना जलील करेंगे आप मुझे, और कितनी सजा देंगे आप मुझे मेरी एक गलती की। कीर्ति की आंखों में आंसू रजत को बेचैन कर रहे थे, लेकिन उसने कीर्ति की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें सजा कहाँ मिल रही है कीर्ति? सजा तो मुझे मिली है, शादी की सजा। मुझे लगा शायद तुमने मुझसे शादी उस रात की वजह से की है, पर मैं गलत था। तुमने तो ये शादी इसीलिए की है ताकि मेरे घर में आकर तुम वो सबूत ढूंढ सको जो मैं आस्तिक के खिलाफ इस्तेमाल करने वाला हूँ। कीर्ति ने अपनी आंखों में आंसू लिए हुए कहा, आप सही कह रहे हैं, मैंने इसीलिए आपसे शादी की है ताकि मैं आपके घर में आ सकूं और मुझे वो सबूत मिल सके जो आप मेरे भाई के खिलाफ इकट्ठे कर रहे हैं। पर मुझे यहाँ पर कुछ नहीं मिला है। तुम यहाँ पर एक मकसद से आई हो। तुम यहाँ पर मुझसे शादी करके मुझे प्यार करने के लिए नहीं आई हो, बल्कि यहाँ पर अपने भाई को बचाने का सबूत ढूंढने के लिए आई हो। तो मैं तुम्हें एक बात साफ साफ बता देता हूँ, तुम्हारा भाई जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं। उसने अरुणिमा की ज़िंदगी बर्बाद करके रखी हुई है और इस वक्त इसकी नज़र पॉलिटिक्स के बड़े बड़े लोगों पर है। आस्तिक उन लोगों को मारने की साजिश रच रहा है, जिसकी वजह से मैं उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रहा हूँ, और जिस दिन मुझे उसके खिलाफ पक्के सबूत मिल गए ना, उस दिन वो सलाखों के पीछे होगा। पृथ्वी ने गुस्से में कीर्ति को देखते हुए तक कहा, तो कीर्ति ने मैं भी चिल्लाते हुए कहा, तुम मेरे भाई के साथ ऐसा नहीं कर सकते हो, मेरे भाई ने कुछ भी नहीं किया है। जो उसने अरुणिमा के साथ किया है ना, उसके हिसाब से तो मैं बहुत कम कर रहा हूँ। अगर मेरे हाथ कानून से नहीं बंधे होते ना, तो शायद अब तक मैं आस्तिक की जान ले चुका होता। रजत गुस्से में ये बोलता है और कीर्ति को क्रॉस करके बाथरूम के अंदर चला जाता है। वो गुस्से में बाथरूम का दरवाजा बंद करता है और कीर्ति अपनी आंखों में आंसू लिए उस बंद दरवाजे को ही देख रही थी। 3 महीने पहले ही रजत को पता चल गया था कि कीर्ति ने उससे शादी किस मकसद से की है। रजत जो आस्तिक के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहा था, कीर्ति का मकसद उसे सबूत को हासिल करना था ताकि रजत आस्तिक तक पहुंच ना सके। कीर्ति रजत और ज्योति के साथ बाहर डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी। जब से ज्योति वापस आई है तब से घर का सारा काम वही कर रही है, क्योंकि रजत ने उसे सख्त तौर पर मना किया है कि कीर्ति कोई काम नहीं करेगी। डिनर ज्योति ने बनाया था। वो रजत और कीर्ति को डिनर सर्व कर रही थी और उसने कीर्ति से कहा, कीर्ति सॉरी, मेरा मतलब है भाभी, आप लोग परसों महल जा रहे हैं ना, वहां से इनविटेशन आया है। कीर्ति एक नज़र रजत को देखती है और फिर हाँ में सिर हिलाते हुए कहती है, हाँ परसों मेरे पृथ्वी भैया और जानवी भाभी की शादी की पहली सालगिरह है। आस्तिक भाई ने पार्टी रखी है और हम सबको भी इन्वाइट किया है। ये कहने के बाद कीर्ति ने रजत को देखा जिसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। वो चुपचाप अपना खाना खा रहा था।